بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، دیکھو پہلے جتنی پہلے کچھ مجالس ہوئی ہے، پہلی شروع کے اندر اس کے اندر تکبر کے بارے میں کافی باتیں آ گئیں. آج انشاءاللہ عجب کے بارے میں باتیں بتائی جائیں گی. مجلس نمبر 51. دیکھو تصوف اور طریقت کی اصطلاح میں تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تصوف اور طریقت کی اصطلاح میں تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک عجب، دوسرا کبر، تیسرا تکبر. عجب، کبر، تکبر، بظاہر دیکھنے میں یہ تینوں ایک جیسے لفظ ہے، لیکن تینوں کے مصداق میں باریک فرق ہے. تینوں کے اندر باریک فرق ہے. اب تینوں کو سمجھو. عجب کس کو کہتے ہیں، کبر کس کو کہتے ہیں، تکبر کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے انسان کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلے عجب ہوتا ہے. اس عجب کی انتہا تکبر پر ہوتی ہے. عجب کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے کسی وصف کی طرف، یعنی اپنی کسی صفت اچھائی کی طرف نگاہ کر کے اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھے. عجب کے معنی کیا ہے؟ انسان اپنی کسی وصف کی طرف نگاہ کر کے، یعنی اچھائی کی طرف نگاہ کر کے، اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا سمجھے، اور اس وصف کے سلسلے میں عطائے حق تعالی کی طرف نگاہ نہ ہو. یعنی یہ جو اچھائی مجھے ملی ہے، یہ اچھائی اللہ تعالی نے دی ہے، اس کی طرف نظر نہ ہو بلکہ اپنی طرف نظر ہو کہ میرے اندر یہ اچھائی ہے. اللہ تعالی نے دی ہے، اس کی طرف نظر نہ ہو تو عجب ہوگا. مثلا ایک شخص عالم ہے، اب اس کے دل میں اپنے عالم ہونے کا احساس پیدا ہوا. ایک شخص عالم ہے، اب اس کے دل میں اپنے عالم ہونے کا احساس پیدا ہوا کہ میں عالم ہوں، اور عالم ہونے کی بنیاد پر اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھا، اور اس علم کے اللہ تعالی کی عطا اور نعمت ہونے کی طرف نگاہ نہیں کی بلکہ میرے پاس علم ہے، اس کے پاس نہیں ہے، تو اپنے آپ کو اچھا سمجھا اس نعمت پر، تو کیا ہوا؟ چاہے اس کے ساتھ دوسروں کی تحقیر ہو یا نہ ہو، اپنے آپ کو اچھا سمجھا، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کی تحقیر حقارت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتیں عجب میں داخل ہے. دونوں صورتیں عجب میں داخل ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھا، اپنی جو اچھائی ہے اس اچھائی کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے یہ نہیں سمجھا، اس پر نظر نہیں گئی. اب اس کے ساتھ ساتھ میں دوسروں کو حقیر سمجھے تو بھی عجب ہے، نہ سمجھے تو بھی عجب ہے. जी, मसलन एक शख्स आलिम है, अब उसके दिल में अपने आलिम होने का एहसास पैदा हुआ कि मैं आलिम हूं, और आलिम होने की बुनियाद पर अपने आप को दूसरों से अच्छा समझा इस बुनियाद पर, और उस इल्म के अल्लाह ताला की अता और नेमत होने की तरफ निगाह नहीं गई। जैसे पिछले सबकों में गया ना कि भाई ये सब अल्लाह की अता समझो, अल्लाह ने दिया है तो शुक्र अदा करो, अपनी तरफ से कुछ नहीं, तो अब उस पर नजर नहीं गई, बस कि मेरे पास इल्म है, बस यही है। अब चाहे उसके साथ दूसरों को हकीर समझे या हकीर न समझे, ये दोनों सूरतों में उजब में दाखिल है। लिहाजा महज अपने किसी अच्छे सिफत का इस्तेहजार अल्लाह ताला की अता और नेमत होने के इस्तेहजार के बगैर करना, ये उजब है। उजब कब पैदा होगा? जब उस हमारी नजर अल्लाह की अता और नेमत की तरफ से जरा हट गई तो फिर वो उजब में दाखिल हो जाता। लेकिन अगर वो अच्छाई, वो सिफत अल्लाह ताला ने दी है, उस पर नजर चली गई तो फिर वो उजब में दाखिल नहीं। देखो उजब, इससे मालूम हुआ कि उजब के अंदर दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ अपनी जात से ताल्लुक होता है। उजब जो होता है, इंसान अपने आप को अच्छा समझता है, दूसरों को हकीर समझे या न समझे, अपने आप को अच्छा समझ रहा है और अल्लाह की नेमत नहीं समझ रहा है, बल्कि अपनी कमाई या अपने आप को अच्छा, ये उजब है। तो उजब का ताल्लुक इंसान की अपनी जात से है, दूसरों के साथ में नहीं, समझे, ये उजब। समझ गए होंगे बराबर। अब उजब, किब्र और तकब्बुर में फर्क क्या है? उसी उजब के नतीजे में, इंसान के अंदर किब्र पैदा हो जाता है। ये उजब बढ़ता है तो फिर किब्र पैदा हो जाता है। किब्र का मतलब क्या है? किब्र का मतलब यह है कि दिल में ये ख्याल आना कि चूंकि मेरे अंदर ये सिफत मौजूद है, ये अच्छाई मौजूद है, लिहाजा मैं बड़ा हूं, मेरे अंदर ये सिफत मौजूद है लिहाजा मैं बड़ा हूं। उजब के अंदर अपनी अच्छाई की तरफ निगाह होती है और किब्र के अंदर अपनी बड़ाई की तरफ निगाह होती है। अजीब, उजब के अंदर अपनी अच्छाई की तरफ सिर्फ नजर गई तो वो उजब हो गया, और किब्र के अंदर कि अपनी बड़ाई आ गई कि मैं बड़ा हूं क्योंकि मेरे अंदर ये अच्छाई है, इस एतबार से जब अपने आप को बड़ा समझता है तो जाहिर बात है दूसरों से फिर वो बड़ाई मांगेगा भी ना। तो अपने आप को बड़ा समझना ये किब्र है, अच्छा समझना ये उजब है, बड़ा समझना ये किब्र है। समझ लो बराबर, सिर्फ अच्छा समझना, बड़ा नहीं समझ रहा है अपने आप को लेकिन अच्छा समझ रहा है। अब एक आदमी बड़ा जब अपने आप को समझेगा तो फिर वो जाहिर हो जाता है, तो और जब तक अपने आप को अच्छा समझता है तो कुछ नहीं, अपनी जात से ताल्लुक है। तो अपने आप को अच्छा समझना ये उजब है, और अपने आप को बड़ा समझना उस सिफत के नतीजे में ये किब्र है। लिहाजा दूसरों से अपने को बड़ा समझ लेना किब्र है। फिर इस बड़ा समझने के नतीजे में, अपने आप को बड़ा समझा है, बड़ा समझने के नतीजे में दूसरों पर अपनी बड़ाई का इजहार करना, बड़ा समझने के नतीजे में दूसरों पर अपनी बड़ाई का इजहार करना तकब्बुर है। तकब्बुर है, मसलन अपनी अकड़ दिखा रहा है। अब जाहिर बात है जब अपने आप को बड़ा समझेगा तो फिर वो अपनी बैठने की जगह भी अच्छी पकड़ेगा, तो अब बड़ाई, अब अपनी चाल भी अलग पकड़ेगा और उसका अपना रहने का सब अंदाज तो जाहिर हो रहा है ना, तो अपनी बड़ाई का इजहार कर रहा है तो फिर ये तकब्बुर हो गया। अपने आप को बड़ा समझे ये किब्र है, अच्छा समझे उजब है, बड़ा समझे किब्र है, फिर उस बड़ाई का इजहार करे बातों से, चाल से, अमल से इजहार करे तो ये तकब्बुर है, मसलन अपनी अकड़ दिखा रहा है। समझे? कर, और दूसरों को हकीर समझ रहा है। अब जाहिर बात है, जब अपने आप जब उसका इजहार होगा तो दूसरों को हकीर समझेगा, और दूसरों के साथ हकारत का बर्ताव कर रहा है, ये सब तकब्बुर के अंदर दाखिल है। तो आज बताओ हमारे अंदर तीनों चीजें है कि नहीं है? है। आज बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर तीनों चीजें ना हो, उजब भी है, किबर भी है, तकब्बुर भी है। अल्लाह ताला हम सब के अंदर से ये तीनों चीजें निकाल दें। इसलिए नेमतों का इस्तेहजार होगा कि अल्लाह ने दिया है, तो फिर उसमें किब्र भी जाएगा, तकब्बुर भी जाएगा, उजब भी जाएगा। देखो जरा सी गफलत हुई कि तीनों बीमारियां आ जाती है, और जरा सा गफलत दूर हुई और इस्तेहजार हुआ अल्लाह की नेमतों का, तो फौरन तीनों बीमारियां चली गई। अच्छा, ये तीन, चौथी चीज है इस्तिकबार। फिर इन तीन के बाद एक चौथी चीज भी, चौथी बीमारी खड़ी होती है, उसका नाम है इस्तिकबार। फिर उसके बाद एक चौथा दर्जा है जिसको कुरान करीम ने इस्तिकबार के लफ्ज से ताबीर फरमाया है। इस्तिकबार का मतलब यह है कि जब इंसान तकब्बुर के नतीजे में दूसरों को हकीर समझता है, तो अब एक कदम और आगे बढ़कर यह करता है कि किसी को खातिर में नहीं लाता, यानी किसी को कुछ समझता ही नहीं है, बोले जो कुछ है मैं हूं, यानी इतना ज्यादा तकबर हो जाता है। इस्तिकबार, बार रा से आर, इस्तिकबार। तो फरमाया किसी को खातिर में नहीं लाता और खुद अपनी मर्जी से जो चाहता है फैसले करता है, और बाज औकात तो जुल्म के फैसले भी कर गुजरता है। ये इस्तिकबार है, इस्तिकबार। हाँ, कुरान करीम ने लफ्ज फिरौन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया है। इस्तिकबार के अंदर हक को कबूल करने से इनाद पैदा हो जाता है। जब इस्तिकबार हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो हक को कबूल नहीं करता। हक को कबूल करना उसके लिए आर महसूस होता है, शर्म महसूस होती है, और कबूल ही नहीं करता है। मैं इतना बड़ा कि मैं कैसे करूं, मेरा फैसला सही है, मैं जो समझ रहा हूं वो सही है। तो इस्तिकबार वो उससे भी आगे का दर्जा है जो कुरान में फिरौन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया है। इस्तिकबार के अंदर हक को कबूल करने से इनाद पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। तो समझ में आ गया, एक होता है उज्ब, एक होता है किब्र, एक होता है तकब्बुर, एक होता है इस्तिकबार। तो उजब से बात शुरू होती है। हाँ, जहां गफलत आई तो सबसे पहले उजब आएगा, फिर उससे गफलत और बढ़ेगी तो फिर किब्र आएगा, गफलत और बढ़ेगी तो तकब्बुर आएगा, और गफलत और बढ़ेगी तो इस्तिकबार आएगा। और जब बीमारियां दूर होगी, जब इंसान अपना इलाज शुरू करेगा, तो सबसे पहले इस्तिकबार जाएगा, फिर तकब्बुर जाएगा, फिर किब्र जाएगा। अब पहले ही दिन से सब खत्म नहीं होता है, तो कुछ कुछ बहुत से लोग सवाल करते हैं, मुझे महसूस हो मेरे अंदर तकब्बुर है, तो वो वसवसे होते हैं, तो भी आहिस्ता आहिस्ता जाता है। तो फिनायत जितनी होगी ज्यादा, उतनी बीमारियां भी दूर होती जाएगी। उजब का इलाज, अब इलाज भी सीख ले। बहरहाल सबसे पहले इंसान के अंदर उजब पैदा होता है, और यही उजब आगे तरक्की करके किब्र, और तरक्की करके तकब्बुर, और तरक्की करके इस्तिकबार पैदा करता है। इसलिए जब उजब इंसान के अंदर पैदा हो तो पहले ही मरहले में इसका इलाज करे। अब बताओ, सब कबूल तो कर रहे कि हमारे अंदर उजब है, और क्या कह रहे कि उसको पहले ही मरहले में, पहले ही जब सुन लो तो उसका इलाज शुरू करे। उसके इलाज के सिलसिले में हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह एक मलफूज फरमाते, उसके इलाज के सिलसिले में सुनो। अमल में दो हैसियत है, अमल में दो हैसियत है, एक अपना कमाल इस एतबार से, यानी अपना कमाल समझकर उस पर नजर न करनी चाहिए। अमल में दो हैसियत, एक तो अपना कमाल, तो उस पर क्या है कि ये अपना कमाल समझकर, अपना कमाल समझकर उस पर नजर न करनी चाहिए, यह है अमल। और दूसरा ये कि ये खुदा की नेमत है, इस एतबार से उस पर मसर्रत मामूर भी है। तो दो अमली इलाज है, अमली इलाज, एक तो अपना जो कमाल है ये समझे मेरा नहीं है, और दूसरा ये समझे कि अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की नेमत है, ये दो इलाज है। आइए आएगी आगे मिसाल आएगी सब कुछ। ये तो उनकी इबारत है, इनकी बात है जो अनफासे ईसा की, कुल बिफजलिल्लाहि वबिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू। देखो पहले मिसाल दी थी कि एक आदमी के अंदर इल्म है और वो अपना इल्म समझता है तो उससे उजब पैदा, इल्म को अताए हक समझो, उसी मिसाल को पकड़ो। अगर कोई शख्स कोई अमल करके इस अमल को अपना कमाल समझकर खुश हो रहा है, किसी से अल्लाह ताला ने कोई खिदमत ले ली, किसी से अल्लाह ताला ने कोई काम ऐसा ले लिया, कोई नेकी का काम हो गया, किसी को खुशी पहुंचाई, मसर्रत मामूर भी, यानी खुदा की नेमत है तो उस पर खुशी होना चाहिए, खुदा की नेमत है तो उस पर खुशी, मसरत माने खुशी। यह है। अब सुनो कि अगर कोई शख्स कोई अमल करे, उस अमल को अपना कमाल समझकर खुश हो रहा है कि मेरा कमाल, और अताए हक ताला पर नजर नहीं कि अल्लाह ने मुझसे काम लिया, उस पर नजर नहीं मैंने किया, उस पर खुश हो रहा है, तो उजब है और गुनाह है, ये उजब एक गुनाह है। और अगर इस अमल को अल्लाह ताला की अता समझकर खुश हो रहा है कि अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया, अल्लाह ताला ने उसकी हिदायत का मैं जरिया बना, अल्लाह ताला ने ये खुशी पहुंचाने का, ये बातिल और इस गुनाह को खत्म करने का मैं बना, ये अल्लाह ने मुझसे काम लिया, तो अल्लाह की अता समझकर खुश हो रहा है कि मेरे अल्लाह ने मुझे नेमत अता फरमाई है, तो ये खुशी महमूद है और मतलूब है, तो ये खुशी तो अच्छी, तो उसको कहते हैं मसर्रत। मामूर भी है यानी ये तो मतलूब है, तो ये खुशी मतलूब, जिसके बारे में कुरान करीम का इरशाद है, कुल बिफजलिल्लाहि वबिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू, कि ये तो मेरे अल्लाह की नेमत है, उसकी वजह से वो खुश हो रहा है कि अल्लाह ने मुझसे काम लिया, अल्लाह की दी हुई नेमत से मैंने काम किया, अल्लाह ने लिया, उस पर खुश होना चाहिए, ये किब्र ये उजब नहीं है। गोया के उसके दिल में ख्याल आ रहा है कि मेरा तो कोई कमाल नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से मुझे ये चीज अता फरमा दी और इस फजल पर खुश हो रहा है, तो ये खुशी न सिर्फ ये कि उजब और किब्र नहीं, बल्कि ये खुशी मामूर भी है, यानी खुश होना चाहिए, क्योंकि इस आयत में फल यफरहू, इस आयत के अंदर अमर का सेगा है कि खुश होना चाहिए, इस आयत में खुशी खुश होना चाहिए, तो मामूर है यानी हुक्म है खुश हो। अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत पर तो खुश होना चाहिए, तो अपने कमाल पर उसका नजर नहीं जा रहा है बल्कि अल्लाह ने किया। मेरी दावत से अगर कोई नमाजी बन गया तो खुश नहीं होना चाहिए, मेरे अल्लाह ने किया, अपनी अता नहीं, मेरे अल्लाह ने तौफीक दी, मेरे अल्लाह ने मुझसे ऐसी बात कही उसकी समझ में आ गया, किसी का काम बना दिया मेरे अल्लाह ने किया, तो नेक काम करने पर खुशी ये ईमान की अलामत है, नेक काम करने पर खुशी ये ईमान की अलामत है। एक हदीस में हुजूर अब्दुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इजा सर्रत का हसन तक वसाअत का सैय तक फअंत मोमिन, यानी जब तुम्हें अपनी किसी अच्छे अमल पर खुशी हो और बुरे अमल पर रंज और गम हो तो ये तुम्हारे मोमिन होने की अलामत है, तुम्हारे मोमिन होने की अलामत है, तो जाहिर बात है मोमिन को खुशी होगी नेकी करेगा तो, लेकिन अल्लाह की अता समझकर खुशी और एक अपने अंदर की वस्फ और सिफत पर खुशी, तो दोनों तरह की खुशी तो दोनों है, लेकिन एक खुशी उजब में जाएगी और एक खुशी नेमत में जाएगी। अल्लाह अकबर। अब इस खुशी को पहचानना ये हमारा काम नहीं, ये हर आदमी नहीं पहचान सकता, इसलिए फरमाया कि अपनी नजर बस अल्लाह की नेमत की तरफ कर लो तो वो खुशी फिर खुद ब खुद नेकी बन जाएगी। तो देखो खुशी दोनों है, क्योंकि एक आदमी काम करेगा उसको खुशी हुई, एक आदमी अल्लाह की नेमत समझ कर काम किया है उसको खुशी हुई, लेकिन उसकी अपनी अच्छाई पर खुशी हो रही। लिहाजा अगर नमाज पढ़कर खुशी हुई और कहा कि अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि ये ईमान की अलामत है। इसी तरह रोजा रखकर खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझसे रोजा रखवा लिया, ये एतिकाफ करके खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने मुझे एतिकाफ करने की तौफीक अता फरमा दी, या किसी की मदद करके खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने मुझे उससे मदद कर फरमा दी, या किसी को अपने मेहमान बनाया और उसका इकराम कर दिया उस पर जो खुशी हुई, तो फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैंने उनका इकराम किया, तो ये खुशी पसंदीदा है, उसमें कोई खराबी नहीं। ये खुशी नकद खुशखबरी है, ये खुशी नकद कैश खुशखबरी है। एक सहाबी रदिल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं कोई अच्छा अमल करता हूं तो दिल में खुशी होती है, उस खुशी पर मुझे ख्याल होता है कि कहीं ये उजबत तो नहीं है। देखो साहबाओं के अंदर ये चीज पैदा हुई, साहबा ने सवाल कर लिया और हमें जवाब मिल गया। सुनो कि आज हम सबका यही सवाल है कि कोई अमल करता हूं तो दिल में खुशी होती है, तो उस खुशी पर मुझे ख्याल होता है कि कहीं ये उजब तो नहीं है। तो जवाब में हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाका आजिलु बशरिल मुमिन बुशरल मुमिन, ये खुशी मोमिन के लिए नकद खुशखबरी है, बुशरा यानी खुशखबरी है, ये खुशी मोमिन के लिए नकद खुशखबरी है, यानी ये तो अल्लाह ताला की तरफ से नकद इनाम मिल गया कि इसके दिल में अल्लाह ताला ने बशाशत पैदा कर दी, ये कोई उजब और तकबर नहीं, उससे नहीं घबराना चाहिए जब तक इस अमल को हक ताला की अता समझते रहो, जब तक इस अमल को अल्लाह ताला की अता समझते रहो। जैसे कि सहाबा रदी अल्लाह ने फरमाया था, लौलल्लाहु महतदा महतदैना महतदैना वला तसद्दकना वला सल्लैना, अगर अल्लाह ताला की तौफीक न होती तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, न हम हिदायत याफ्ता होते, न सदका खैरात करते, न नमाज पढ़ते, लिहाजा इन आमाल को अताए हक समझते रहो और उन पर खुश होते रहो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। सुभान अल्लाह, देखो कितनी बड़ी हमारी बीमारियां दूर होगी, ये बहुत वसवसे थे हमारे दिलों में। जी हक ताला की अता समझे हैं, उस पर खुशी हुई तो वह इबादत बन गई, वह इबादत बन गई, वो उज बनी। और अगर अपना समझे नहीं मैंने किया है, तो फरमाया इबादत करके भी वो उजब हो गया, गुना बन गया। देखा थोड़ा सा फर्क है, वही ना, गफलत आएगी तो उजब बन जाता है, गफलत दूर होगी तो इबादत बन जाती है, अल्लाह ने करवाया। वरना आजकल इंसान करके मैंने किया मैंने किया, हर एक में कहो अल्लाह ने करवाया, अल्लाह ने तौफीक, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से हुआ। इसलिए अपने अल्फाजों में हमेशा अल्लाह का लफ्ज बोलते रहो, तो जिक्र भी हो जाएगा और इस्तेहजार भी हो जाएगा। खुशी मतलूब है, खुशी ममनू नहीं। और इस आयत में फरमाया, हाँ अगर अल्लाह ताला की तौफीक न होती तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, न हिदायत याफ्ता होते, न सदका खैरात करते, न नमाज पढ़ते। और अगर इस बात पर खुशी हो रही है कि मैं तो कमाल तक पहुंच गया और इस अमल के करने में अल्लाह ताला की अता पर नजर नहीं, बल्कि उसको अपना इस्तेहकाक और अपना कमाल समझता है, उसके नतीजे में दूसरों को तहकीर करता है, तो ये खुशी वो है जिसको कुरान करीम में ला तफरह के लफ्ज के जरिए मना किया गया है। तो देखो ये भी खुशी है वो भी खुशी है, ये खुशी कुरान ने मना कर दिया, ये उजब हो जाता है, और वो खुशी नेकी बन जाती, इबादत बन जाती। जी अल्लाह अकबर कबीरा। तो देखो खुशी मतलूब है, खुशी ममनू नहीं। तो वही समझो कि खुशी दोनों तरह से होगी, बहुत से लोग अमल करके खुश होते हैं, लेकिन दो आदमी ने अमल किया दोनों खुश है, लेकिन एक उजब की बिना पर खुश है और एक इबादत की बिना पर खुश है, कि इसने अताए हक समझा, उसने अपना कमाल समझा। इस आयत में फरमाया, फबी फबी जालिक फल यफरहू, खुश होने का हुक्म दिया गया तो एक खुशी मतलूब और मकसूद और मामूर भी ही है और एक खुशी ममनू अनहु और हराम है। जो खुशी मामूर भी ही है वो ये कि अल्लाह ताला ने अमल की जो तौफीक अता फरमाई उस पर नजर करके खुश होना ये मामूर भी उसका हुक्म है, लेकिन अपने कमाल पर खुश होना कि मेरा ये कमाल है कि मैंने ये अमल सर अंजाम दिया तो ये अतराहट इतराहट है, ये तकब्बुर है और ममनू है और हराम है। देखा सुभान अल्लाह तो बोलो यार, कोई सुभान अल्लाह भी नहीं बोल रहा है, अजीब है। चलो मैं खुद ही बोल रहा हूं सुभान अल्लाह। ए इतने इतने ध्यान से भी सुन रहे कि सुभान अल्लाह बोलना भूल जाते हैं। हाँ तो बोलते रहोगे तो जागते भी रहेंगे। अच्छा अब फर्क के लिए, अब फर्क कैसे करोगे कि ये खुशी इबादत है और ये खुशी मना है, ये खुशी मतलूब है, ये खुशी ममनू है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए शेख की जरूरत है, फिर आया डॉक्टर की जरूरत है। हाँ जी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों खुशियों में फर्क इंसान खुद नहीं कर सकता, खुद नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए किसी शेख की और मुआलिज की, हाँ मुआलिज यानी डॉक्टर की जरूरत होती है। वो बताता है कि यहां पहली किस्म की खुशी है, इसलिए वो बताएगा कि तुम्हारी खुशी कोई बात नहीं, ये तकब्बुर नहीं है, और तुम्हारी ये खुशी बोले ये ममनू है, ये उजब में ले जाएगी। ये तो शेख बताएगा, रूहानी डॉक्टर बताएगा, इसलिए फिक्र की बात नहीं। जैसा कि उन सहाबी रदिल्लाहु अन्हु के दिल में शक पैदा हुआ कि खुशी जो मेरे दिल में पैदा हो रही है ये पहली खुशी हो रही है या दूसरी खुशी हो रही है, मामूर भी ही खुश हो रही है या मन ही अनहु यानी जिससे रोका गया वो खुशी हो रही है, तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखो उन्होंने पूछ लिया, सहाबा ने पूछा ना तो हमें भी पूछना पड़ेगा, पूछ लिया तो आपने फरमाया जाक आजिलु बुशरा बुशरल मुमिनीन, ये पहली किस्म की खुशी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब पर इत्मीनान हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी बुरी नहीं है, अगर दूसरी किस्म की खुशी होती तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इलाज फरमाते। अल्लाह अकबर। आजकल शेख बनाने का मकासिद, आजकल जो शेख बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं वो भी जरा सुन लो। शेख की जरूरत इन कामों में पड़ती है, देखो शेख की जरूरत ऐसे कामों में पड़ती है कि अभी मेरे अंदर ये तकब्बुर है या नहीं है, मेरे अंदर ये गुस्सा गलत है या सही है, ये मेरा हसद है या हसद नहीं है, अब ये कौन पता चलेगा, ये तो शेख ही बताए। तो यहां ऐसे कामों में जरूरत पड़ती है शेख की। लेकिन आजकल लोग ये समझते हैं कि शेख इसलिए बनाए जाते हैं कि बस उससे तो वजीफा पूछा जाए, भाई कौन सा वजीफा पढ़ेंगे तो मेरा ये काम बन जाएगा, कौन सा वजीफा पढ़ेंगे तो मुझे इतना माल मिल जाएगा, और कौन सा वजीफा पढ़ेंगे तो मैं गलत काम भी करूं तो मुझे पुलिस वाला ना पकड़े। आजकल वजीफे ऐसे पूछे जाते हैं, मैं कौन सा वजीफा पढ़ूं तो मेरा सूद जो है उसके वबाल से मैं महफूज हो जाऊं, वजीफे पूछे जाएंगे कि क्या पढ़े, अगर कोई ख्वाब देखे तो फिर शेख से पूछेंगे किसकी ताबीर, शेख से पूछो, ख्वाब से पूछेंगे, और उसे ये पूछो कि कर्ज अदा करने की क्या दुआ है, और रिस्क बढ़ाने के लिए कौन सी दुआ है, और रोजी मिल जाए इसकी क्या दुआ है, सर्विस मिल जाए उसकी क्या दुआ है, बस शेख इन कामों के लिए होता है। और अखीरतन लोग यही पूछना था, कोई ये नहीं पूछता कि मेरा ये उजवा है या नहीं है। देखो साहब ऐसा पूछते थे कि अल्लाह के रसूल मेरे अंदर देखो वसाविस आ रहे, तो ये वसाविस कैसे है, तो फरमाया जाके ईमान, ऐसे वसाविस आते हैं कि मैं जल के कोयला हो जाऊं, मैं जबान पे नहीं ला सकता। देखो वहां पूछने आए, फिर यहां पर इनको वसवसा हुआ कि मेरे को खुशी होती है किसी काम करने पर, तो क्या ये उजब तो नहीं है, देखो पूछ रहे, साहबा ऐसी बातें पूछते थे। और आजकल जिन्होंने पहले तो शेख कोई बनाता नहीं है और कोई बनाता है तो फिर यही पूछते हैं, बहुत बहुत तो अगर मियां बीवी में झगड़ा हो गया तो वे दुआ के लिए आएंगे, बाकी पूरे साल कभी नहीं पूछेंगे कि मेरे अंदर ये हो रहा है और ये गुनाह हो रहा है, ये कैसे छूट जाए। बस शेख इन कामों के लिए होता है, सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं कामों के चक्कर होते हैं, उसी का नाम पीरी मुरीदी रख लिया है। याद रखिए, इन कामों का पीरी मुरीदी से कोई ताल्लुक नहीं है। न तावीज गंडे, बहुत तो लोग तावीज बनाने के लिए, भैया ये बोले शेख तावीज दे देंगे तो अपना काम बन जाएगा। न दुआएं, न वजीफे, न ख्वाब की ताबीर, इनका शेख से कोई ताल्लुक नहीं। असल चीज पूछने की ये है कि अमल करने पर मुझे जो खुशी हो रही है, ये मेरी खुशी मकबूल है या नहीं, ये खुशी उजब और गुनाह तो नहीं है। और फिर शेख के बताने पर अमल करो। पीरी मुरीदी का असल मकसद ये है कि आजकल ये बातें तो पूछते नहीं, लेकिन वजीफे और जिक्र और अजकार पूछते रहते हैं। बुरा तो नहीं लग रहा है ना भाई, मैं तो किताब की बात पढ़ रहा हूँ भाई, बड़ों की बात पढ़ रहा हूँ। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह की बात है और उसी की तफसीर, उसी की तशरीह हो रही है जी। इसलिए कि मैं भी कई मरतबा पूछा कि देखो बात सुनने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा मुझे सवाल नहीं आया कि मुझसे ये पूछ रहे हो कि मेरे से ये गुनाह हो रहा है कैसे छूट जाए, या मेरे अंदर ये हसद की अलामतें है कि ये किब्र की है, उजब की, ये क्या है, ये गुस्सा की, कोई सवाल नहीं आया इतने सालों से। इल्ला माशाल्लाह दो चार जन हैं जो बराबर पूछते रहते हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं। देखो याद रखो, पहले तो पीर बनाना चाहिए, लेकिन उसका बनाने का मकसद अल्लाह का ताल्लुक हासिल करना है। पीर क्या है, उसका दूसरा नाम अमीर है। अगर तबलीग अल्फाज लो तो बोले अमीर होना चाहिए, जिसका अपना कोई अमीर नहीं है उसका अमीर शैतान हो जाता है। इसलिए इंसान अकेला जिंदगी न गुजारे, उसका कोई ना कोई अमीर हो, उसका कोई ना कोई रूहानी डॉक्टर हो। जिस्म का जब डॉक्टर होता है तो रूह का डॉक्टर क्यों नहीं बनाते, तो बनाना चाहिए। उसके जरिए से रूहानी इलाज होगा, रूहानी इलाज, बाकी वजीफे वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। बगैर वजीफे के अल्लाह का ताल्लुक मिल जाएगा। सिर्फ शेख बनाओ, रूहानी डॉक्टर बनाओ, उससे अपना इलाज कराओ। बीमारियां वजीफे पढ़ने से दूर नहीं होगी, बीमारियां दूर करने का अलग इलाज है भाई। दवाओं के नाम लेने से क्या शिफा मिल जाएगी? दवाओं के नाम लेने से शिफा नहीं मिलेगी, दवा खाने से शिफा होगी। तो हम अगर नाम ले रहे, वजीफे पढ़ रहे तो नाम ले रहे, तो उससे शिफा नहीं होगी बल्कि बाकायदा इलाज होगा। तो इलाज होगा, तो इलाज से फिर काम चलेगा। खैर, अल्लाह ताला हम सबको इलाज करने की तौफीक अता फरमाए। तौफीक के इलाही पर शुक्र करना चाहिए। चुनांचे आगे हजरत वाला फरमाते हैं, काम करने वालों को चाहिए कि अपने आमाल को अपना कमाल न समझे, बल्कि अल्लाह ताला का एहसान समझकर शुक्र करे कि उन्होंने हमसे काम ले लिया, वरना हमारी क्या ताकत थी। यह मिन्नत मने के खिदमते सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत मने के खिदमते सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत शनाश अजू के बखिदमत बदाश्तत। एहसान मत समझो कि मैं बादशाह की खिदमत कर रहा हूं, बल्कि एहसान समझो कि उसने तुम्हें अपनी खिदमत में रखा। समझे, ये एहसान। यानी अगर अल्लाह ने कोई खिदमत कोई कोई आपसे काम लिया तो ये मत समझो कि मैंने ये काम किया, बल्कि समझो कि अल्लाह ने मुझसे काम लिया। ये है जो कुछ भी काम हो रहा है, मसलन इबादत हो रही है, खिदमत खल्क हो रही है, कोई इल्मी खिदमत हो रही है, कोई पढ़ने पढ़ाने में मशगूल है, कोई इकराम और मेहमान नवाजी में मशगूल है, कोई किसी को दावत और तबलीग में काम कर रहा है, कोई वाइज है, कोई तबलीग है, कोई फतवा में है, कोई तसनीफ में है, जो कोई खिदमत हो रही है उसको अपना कमाल ना समझो, बल्कि अल्लाह ताला की तौफीक पर शुक्र अदा करो। अल्लाह की तौफीक पर शुक्र अदा करो। देखो, जिसको ये इस्तेजार होगा कि अल्लाह की तौफीक है, तो वो अपना काम हमेशा करता जाएगा, छूटेगा नहीं। और फिर अगर उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा, उसको बुरा भी नहीं लगेगा। क्यों? कि वो तो क्या, अल्लाह ने मुझसे काम लिया। कोई तारीफ करे तो उजबन ही आएगा, और कोई तारीफ न करेंगे तो उससे एहसान नहीं छूटेगा कि बोले मेरा तो अल्लाह के लिए करना है। तो ये है कि शुक्र करने वाला, अल्लाह की नेमत समझने वाला, उसको तो खुशी होगी, सामने वाला चाहे इस नेमत का शुक्र अदा करे या न करे। कहिए अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने इसकी तौफीक अता फरमा दी, वरना कितने लोग हैं जो जूतियां चटकाते फिरते हैं। मेरी हकीकत ही क्या थी कि मैं अमल करता। जब इंसान ये सोचता है तो उससे तकबर और उज्ब पैदा नहीं होता। मिन्नत मने के खिदमते सुल्ता हमी कुनी, मिन्नत शनास अजू के बखिदमत बदाश्त। ये क्या एहसान जताते हो कि मैंने फुला खिदमत अंजाम दे दी, या फुला खिदमत अंजाम दे दी, फुला काम कर दिया, फुला जगह तकरीर कर दी, और फतवा लिख दिया, फुला किताब लिख दी, और एहसान किया तो अल्लाह ताला का, तो एहसान तो अल्लाह ताला का मानो कि उसने तुम्हें इस खिदमत पर लगा दिया। एहसान तो अल्लाह ताला का मानो, तुम अल्लाह पर एहसान मत जताओ कि मैंने अल्लाह का ये काम कर दिया, बल्कि अल्लाह का एहसान मानो कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए कबूल किया। अरे कितने लोग हैं जिनको इन अमल की तौफीक नहीं होती। अल्लाह ताला ने तुम्हें इस काम पर लगा दिया, अल्लाह ताला ने तुम्हें इस काम पर लगा। क्या ये नाज की बात है? ये कोई फखर करने की बात है या दूसरों पर बड़ाई जताने की बात है? अरे ये तो अल्लाह जल्ल शानू का करम है कि उसने तुम्हें इस काम पर लगा दिया, इसलिए इस काम पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। इस काम पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा। मसलन कोई इबादत अंजाम दे दी, नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, एतिकाफ कर लिया, रमजान में तरावी पढ़ ली, कुरान की तिलावत कर ली, जिक्र कर लिया, दावत में किसी की मुलाकात कर ली, जमात बना दी, तश्कील कर ली, तो इन इबादत के करने पर एहसान किस लिए जताते हो? इस इबादत करने पर एहसान किस लिए जताते हो? अरे ये तो उसका करम है कि उसने तुम्हें इन इबादत की तौफीक दे दी, इस तौफीक पर उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह अकबर। तो शुक्र अदा करो, और शुक्र के नतीजे में अल्लाह मजीद तौफीक देंगे। लिहाजा इस इबादत की नाकदरी न करो और नाशुक्री भी मत करो, बल्कि शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने इस इबादत की तौफीक अता फरमा दी। और ये सोचो कि अगर उसकी ये तौफीक न होती तो मैं न जाने किस हाल में होता। जब ये सोचोगे और शुक्र अदा करोगे तो फिर न तो उज्ब करीब आएगा, न तकब्बुर करीब आएगा, और शुक्र अदा करने की बदौलत अल्लाह ताला मजीद इबादत की और अच्छे कामों की तौफीक अता फरमाएंगी। शुक्र अदा करना कलंदरी अमल है, कलंदरी कलंदर, लेकिन इस काम की मशक करनी पड़ती, याद रखो। लिहाजा जब भी किसी नेक काम की तौफीक हो तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। चुनाचे हमारे हजरत वाला फरमाया करते थे कि बाज आमाल, यानी डॉक्टर अब्दुल हई साहब, बाज आमाल कलंदरी होते हैं, और ये शुक्र भी कलंदरी अमल है। यानी शुक्र ऐसा अमल है कि देखने में कोई बड़ा अमल नहीं, आपने चुपके से कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को पता चला कि आपने क्या अमल किया, या ये कह दिया अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, किसी को पता भी नहीं चला कि आपने क्या किया, लेकिन अंदर ही अंदर जरा सी देर में क्या से क्या हो गया, और उसकी नतीजे में तुम्हारा दर्जा कहां से कहां पहुंच गया, और देखने वालों को पता भी नहीं चला। कलंदरी अमल का मतलब यह है, कलंदरी अमल का मतलब यह है, किसी को कुछ पता भी नहीं चला और अंदर ही अंदर कितने दर्जे तक पहुंच गया। जी, मयाने आशी को माशूक रमजेस, मयाने आशी को माशूक रमजेस, किरामन कातिबीन रा हम खबर नेस्त। यानी ये आशिक और माशूक की बात है, अल्लाह और बंदे के दरमियान का एक राज है जो किरामन कातिबीन लिखने वाले फरिश्तों को भी पता नहीं है, उनको भी खबर नहीं। मयाने आशी को माशूक रमजेस, किरामन कातिबिंद्रा हम खबर नेस। तो यह है कलंदरी वाला। शुक्र अदा करने की मशक हमारे हजरत वाला फरमाया करते थे कि जबान पर शुक्र का रट्टा लगाया करो। मसलन गर्मी लग रही थी, एक हवा का झोंका आया तो कहो अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। घर में दाखिल हुए, बच्चा खेलता हुआ अच्छा मालूम हुआ, उससे दिल खुश हुआ तो कहो अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। भूख लग रही थी, खाना सामने आया तो कहो अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। तो दिल ही दिल में कहते जाओ और उसकी आदत डालो कि हर वक्त तुम्हारा दिल अल्लाह ताला की किसी न किसी नेमत पर शुक्र कर रहा हो। जब बार बार उसकी मशक करोगे तो ये बात हासिल हो जाएगी। फिर ये होगा कि आदमी काम भी कर रहा है और दिल अल्लाह ताला के शुक्र में मशगूल है। हमारे हजरत डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह शेर पढ़ा करते थे, जिगर पानी किया है मुद्दतो गम की कशाकशी में, जिगर पानी किया है मुद्दतो गम की कशाकशी में, कोई आसान है क्या खुगर आजार हो जाना, खुगरे आजार हो जाना। हजरत फरमाया करते थे कि मैंने साल हा साल मशक की है कि हर वक्त अल्लाह ताला की किसी न किसी नेमत पर शुक्र अदा करता रहूं। अंदर ही अंदर अपने मालिक से, अपने खालिक से, अपने आका से रिश्ता जुड़ा हुआ है और किसी दूसरे को पता भी नहीं है। शुक्र रजाइल की जड़ काटता है। शुक्र क्या है? बीमारियों की जड़ काटता है, बुराइयों को काटता है। ये शुक्र ऐसा तिरियाक है, तिरियाक कहते हैं जहर के असर को खत्म करने वाली चीज, जो बेशुमार बेशुमार रजाइल की जड़ काटता है और बेशुमार फजाइल इसके जरिए हासिल होते हैं। इसलिए शुक्र की आदत डालो, ये कलंदरी अमल है। इसके अंदर बहुत बड़े मुजाहदात और रियाजतें नहीं है, बहुत मुख्तसर सा काम है कि सुबह से लेकर शाम तक हर अमल पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते चले जाओ। मसलन आप मस्जिद से बाहर निकले, दरवाजे पर जूते आसानी से मिल गए तो कहो अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। किसी से मुलाकात के लिए गए और उस शख्स से मुलाकात हो गई तो दिल ही दिल में कहो अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। जो भी मकसद हासिल हो जाए, चाहे वो छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, उस पर अल्लाह जल्ल शानों का शुक्र अदा करने की आदत डालो। लोग उस शुक्र की कदर नहीं करते और समझते एक बहुत मामूली सा अमल है, लेकिन ये अजीम तिरियाक है, बीमारियों को काटने वाला है। इस पर अमल करके देखो, जो जो इंसान उसकी मशक करेगा, उस पर अमल करेगा, तो फिर ये उज्ब और ये तकब्बुर पास नहीं फटकेगा, बहुत दूर भागेगा। और शैतान भी ये गुर जानता था कि जो बंदा शुक्र करता हो रहेगा वो मेरे कब्जे में नहीं आएगा। इसी वजह से उसने कहा था वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अल्लाह ताला अपनी रहमत से मुझे और आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो देखो आखिर में शुक्र आ गया। तो उजब का इलाज, कई बीमारियों का इलाज शुक्र के अंदर है, और शुक्र का बार बार कहीं ना कहीं आता रहता है, हमारे अंदर गफलत आ जाती है। हम खूब मशक करें जगह जगह पर अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। देखो अल्लाह ताला ने मुझे दर्स और ये सबक देने की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह का शुक्र है। और आप शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ताला ने सुनने की तौफीक अता फरमाई, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। समझने की तौफीक अता फरमाई, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अल्लाह ताला से फिर अमल की तौफीक मांगे और अमल हो जाए उस पर शुक्र अदा करें। ठीक है, इंशाल्लाह थोड़ी देर मुराकबा कर लें।